اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب قلندر شعور جو تصنیف ہے مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی، آج ماشاءاللہ ہم اس کا صفحہ نمبر 84 صفحے سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. یہ چیپٹر کا نام ہے آدم و حوا کی تخلیق. آدم اور حوا کی تخلیق. آسمانی کتابوں کو پڑھنے اور ان کتابوں کی تعلیمات پر غور کرنے سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ آدم کو ایک جان سے تخلیق کیا گیا ہے. تخلیق کی اس بنیاد کو نفس، جان اور نقطہ واحدہ کہا گیا ہے. آدم کی تخلیق کی بنیاد کو نفس، جان اور نقطہ واحدہ کہا گیا ہے. ذرا ان تین لفظوں پہ غور کیجئے کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ ہم ان تین لفظوں کو صرف الفاظ سمجھ کے حفظ کرتے رہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں ان تین لفظوں کو جان کسے کہتے ہیں، یعنی میری جان جو ہے جس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ ساری ہمارے اندر جو جان ہے، ہم جو زندہ ہیں، یہ زندگی جو ہے اسی کو جان کہا ہے. اور اسی سے جو لفظ صیغہ واحد متکلم ہے، یعنی میں کا لفظ، انگریزی میں اسے آئی کہتے ہیں، آئی ایم. یہ جو آئی کا لفظ ہے، یہ جو میں ہے، یہی نفس ہے، یہی جان ہے اور یہی نقطہ واحدہ ہے. جب ہم نقطہ واحدہ کہتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں نفس کے جو تراجم کیے گئے ہیں وہ سارے ہی الفاظ ناگفتہ بے ہیں، یعنی نہ کہنے کی بات ہے. ناگفتہ بے، جس کو گفت نہ کیا جا سکے، جس کو بولا نہ جا سکے. یعنی ذات جو ہے، ذات ایک کل ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو جب چاہا کہ کوئی مجھے سراہے، کوئی مجھے اکنالج کرے، کوئی مجھے ریئلائز کرے، تو اس نے اپنی ذات میں سے، اپنی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ جو ہے اس کو انسان قرار دے دیا. یہ ہے کل کہانی. ہر انسان اللہ کی ذات کی تجلی کا ایک نقطہ ہے. میں نے مثال دی تھی کہ سمندر میں سے اگر آپ ایک گلاس پانی لیں تو اس پانی میں سمندر کی ساری خاصیتیں موجود ہوں گی یا نہیں ہوں گی، سوائے گہرائی اور وسعت. تو تخلیق کی اس بنیاد کو، یعنی ایک جان سے تخلیق کیا، ایک جان سے تخلیق کیا، اسی کو حضور قلندر بابا اولیاء نے کل ذات کہا ہے. اور اس نقطہ واحدہ کو، اس نفس کو، اس جان کو یک ذات کہا ہے. کل ذات ظاہر ہے وہ اللہ رب کریم کی بات ہو رہی ہے, اور یک ذات وہ اس کے نائب کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے نیابت سے سرفراز کیے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس تصور کو اپنے ذہنوں میں بالکل کلیئر کر لیں کہ جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, یعنی میں, نفس, قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا, انفس اور نفس, یہ دونوں لفظ اسی جان کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اسی کو روحانیت میں یا تصوف میں نقطہ واحدہ بھی کہا گیا ہے. اب بات کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں, ہم انہی الفاظ کو بات نہ سمجھنے کا ذریعہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. عام حالات میں حضور مرشد کریم فرماتے ہیں, عام حالات میں جب ہم تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر نوع کا ایک آدم ہے, یعنی ہر نوع کا ایک بابا آدم ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا, اور ساری نو آدم و حوا سے وجود میں آئی. اب اس جملے میں ایک مس کنسیپشن کو کس سلیقے سے ابا نے ختم کر دیا, آپ اس کو توجہ سے دیکھیں کہ پوری نو آدم اور حوا سے وجود میں آئی. جس طرح ایک آدمی کی نو کا تعلق آدم و حوا سے ہے, اسی طرح بکری کی نو کا تعلق بکرے اور بکری سے. اب اس میں باریکی نوٹ کریں کہ جب ہم آدم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرد آتا ہے, اور پھر آگے سے ہمارا دماغ جو ہے کہانیاں گھڑتا ہے کہ اس کی پسلی سے حوا کو تخلیق کیا گیا. بھائی اللہ رب کریم نے کبھی کسی شیر کی پسلی سے شیرنی تخلیق کی, کسی بلے کی پسلی سے بلی تخلیق کی, کسی کتے کی پسلی سے کتیا تخلیق کی؟ ایسی کہانی تو کوئی نہیں بنا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, قانون فطرت ہے, اللہ نے جوڑوں میں تخلیق کیا تو اللہ نے نر اور مادے کو ایک ساتھ پیدا کیا اور اس کو نو انسانی کو اس کا نام آدم رکھا. تو ساری نو آدم و حوا سے وجود میں آئی. تو آدم اور حوا دونوں ایک ساتھ تخلیق ہوئے. جس طرح ایک آدمی کی نو کا تعلق آدم و حوا سے, اسی طرح بکری کی نو کا تعلق بکرے اور بکری سے. مثال بھی سمجھ, اس نقطے کو واضح کر لیں اپنے ذہن میں. یہ ہمارے ذہن میں الجھے ہوئے پنگوں کو کنگھی کیا جا رہا ہے. بڑے آرام سے, سلیقے سے حضور مرشد کریم نے تو ساری بات کہہ دی. ہماری فہم یہاں رکے تو صحیح, اسے پھدکنے سے فرصت نہیں ہے. الحاظل قیاس, کائنات میں ہر نوعی پروگرام اسی فارمولے پر قائم ہے. تو انسان اگر باقی سارا, مطلب بکرے اور بکری کو بابا آدم کہا گیا ہے, تو کیا انسان اس سے کیسے مستثنا ہو گیا؟ غور کیجئے, یہ ہے قلندر شعور جو آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں کیسے سوچنا چاہیے, ہمیں حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے کس طرح حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اصل بات کو جاننا ہے. الحاظل قیاس, کائنات میں ہر نوعی پروگرام اسی فارمولے پر قائم ہے. یعنی کسی وقت آدم و حوا علیہ السلام کا وجود تخلیق ہوا. یہاں دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا, اور اس کی نسل چل پڑی. یعنی اللہ رب کریم کا ایک انتظام ہے, مرغا اور مرغی پیدا کیا, آگے ان کے اندر اپنی نو کو ریپروڈیوس کرنے کا ایک سسٹم اللہ نے ان کے اندر رکھ دیا. اس نو کے اندر, ہر نو کے اندر خود کو ریپروڈیوس کرنے کا, یعنی آگے نو کے افراد کو تخلیق کرنے کا نظام رکھ دیا. کیا ہوا؟ اس کی نسل چل پڑی. बैल, बकरी, भेड़, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, नए नए परिंदों की तख्लीक भी उनके आदम व हव्वा से वजूद में आई। जिस तरह बाबा आदम से आदमी बना, इसी तरह बाबा तोते से तोता बना, बाबा बकरे से बकरे की नस्ल चली, और बाबा कबूतर से कबूतर की नस्ल वजूद में आई। ये तज़करा है उस तख्लीक का, जिस तख्लीक को हम गोश्त पोस्त का नाम देते हैं। पैदा होने वाला हर फर्द, वो आदम हो, भेड़ हो, बकरी हो, बंदर हो, गोश्त पोस्त के आर्जी जिस्म से मुरक्कब है। अब यहां देखें, दोबारा उस लफ्ज आदम को इस्तेमाल किया, हर फर्द वो आदम हो। अब इसमें औरत का जिक्र अलग से नहीं किया। क्या कहा? भेड़ हो, बकरी हो। जब बकरी कहा तो बकरे का तذکرہ नहीं हुआ। बंदर हो तो गोश्त पोस्त के आर्जी जिस्म से मुरक्कब है। गोश्त पोस्त का जिस्म आर्जी जिस्म है। ये आर्जी जिस्म की बुनियाद एक मुस्तकिल पायदार जिस्म पर है, जो उसका नफ्स है, जो उसकी जान है, जो उसका नुक्ता है, वाहिदा है। पैदा होने वाला हर फर्द, हर फर्द, खा वो आदम हो, भेड़ हो, बकरी हो, बंदर हो, गोश्त पोस्त के आर्जी जिस्म से मुरक्कब है कुछ अरसा। अच्छा, ये देखिए, हर नौ में यही कानून चल रहा है। कुछ अरसा वो नरम और नाजुक रहता है, फिर उसके ऊपर जुलानियत तारी होती है, जवानी आ जाती है। फिर आसाब और आजा, खुश्क रहने के बाद ये जिस्मानी निजाम खत्म हो जाता है। फिर उसके आसाब सूखना शुरू हो जाते हैं, आजा खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है फिर? जिस्मानी निजाम खत्म हो जाता है। इन्हीं कैफियात को जिंदगी और मौत कहा जाता है। ये है जिंदगी और ये है मौत, यानी मादी जिस्म का खत्म होना हमारे यहां मौत कहलाता है, और हमें इस पे तफक्कुर करते हुए मौत पड़ती है। एक हकीकत का सामना ना करने के लिए हमने कितने बहाने तराशते हैं। हकीकत ये एक सिस्टम है। जो चीज भी मादी तौर पे सामने आई है उसने गायब होना है। जब सामने आ रही है तो आप कहते हैं ये जिंदगी है, जब वो गायब हो रही है तो आप कहते हैं ये मौत है। लेकिन हमें हर लम्हा, हर आन ये इल्म भी मुंतकिल होता रहता है कि जिस्मानी वजूद जिस तरह एक आर्जी शय है, इसी तरह वो वजूद जिसके ऊपर जिस्मानी निजाम की बिल्डिंग खड़ी हुई है मुस्तकिल है। जब तक मुस्तकिल वजूद जिस्मानी ढांचे को संभाले रखता है, जिस्मानी बिल्डिंग खुशनुमा, खूबसूरत और मुतहर्रक रहती है। और जब ये अनदेखा वजूद इस आर्जी वजूद से अपना रिश्ता मुनकता कर लेता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। यानी वो वजूद तो खुद बाकी रहता है, लेकिन इस आर्जी वजूद से रिश्ता मुनकता कर लेता है और हमें लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। उस अनदेखे वजूद को अवतार और पैगंबरों ने जान, नफ्स, नुक्ता और रूह के नाम से मुतारिफ करवाया है। हजूर कुलंदर बाब औलिया ने किताब लौह कलम में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, असल इंसान। असल इंसान जो इस मादी जिस्म को छोड़कर कहीं चला जाता है, असल इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया। हमारी तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है कि हम ये मादी जिस्म, जिससे आशना है ये असल इंसान नहीं है। हजूर फरमाते हैं कि कलंदरिया सिलसिले में गौर करें, क्या अल्लाह से इस्तेमाल किया है, कलंदरिया सिलसिले से जब रूहानी दुनिया के मुसाफर को कलंदर शऊर की निस्बत हासिल होती है तो उसके अंदर की आंख ये देख लेती है कि जान नफ्स नुक्ता या रूह तख्लीक करने वाली हस्ती के वजूद का एक हिस्सा है, तख्लीक करने वाली हस्ती की तजल्ली का एक वस्फ है और तजल्ली का ये वस्फ कुदरत और रहमत के साथ इस जान नफ्स या नुक्ते के साथ हम रिश्ता है। तजल्ली का ये वस्फ कुदरत और रहमत के साथ इस जान नफ्स या नुक्ते के साथ हम रिश्ता है। इस पैराग्राफ में पहले तो देखें यहाँ कलंदरिया सिलसिले, यानी सिलसिला अजीमिया एक कलंदरिया सिलसिला, सिलसिला अजीमिया का हर फर्द हर सालिक से ये तवक्को की जाती है कि वो कलंदराना तर्ज फिक्र से आरास्ता हो जाए। इसलिए यहाँ ये कोई गलती से नहीं लिखा, कलंदरिया सिलसिले की निस्बत हासिल है आपको, कलंदरी सोच हासिल है आपको, आपने सिर्फ उसको अपनाना है। हासिल तो है, जिस दिन आप बैत हो गए आपको हासिल हो गई क्योंकि आप हजूर कलंदर बाबा औलिया के नाम लेवा बन गए। जब रूहानी दुनिया के मुसाफर को, जब रूहानी दुनिया के मुसाफर को, यानी कलंदरिया सिलसिले में होने वाला हर फर्द रूहानी दुनिया का मुसाफर बन गया, जब उसको कलंदर शऊर की निस्बत हासिल हो गई, यानी उसको कलंदर शऊर हासिल होना शुरू हो गया, यानी उसका जहन इस तरह बातों को तवज्जो से समझने लगा, तो उसके अंदर की आंख, उसके अंदर की आंख उसे बसीरत का है कुरान ने, इसी को फिरासत का है। तो उसके अंदर की आंख ये देख लेती है कि ये जान नफ्स नुक्ता या रूह तख्लीक करने वाली की वजूद हस्ती के वजूद का एक हिस्सा है। यानी फिर आपको ये समुंदर और पानी की मिसाल, ये जो कुल जात और यक जात है, ये जो एक बड़ी रोशनी का एक जर्रा होने का शर्फ हमें हासिल है, वो बात समझ में आने लगती है। और तख्लीक करने वाली हस्ती की तजल्ली का एक वस्फ है, हस्ती का नहीं, हस्ती की तजल्ली का एक वस्फ है, हस्ती की तजल्ली। देखें अल्लाह के लिए लफ्ज हस्ती होने वाली चीज, जो चीज है, वो चीज कहें जात कहें, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। तख्लीक करने वाली हस्ती, एक ऐसी हस्ती जिसने तख्लीक किया है, जो तख्लीक करती है कर सकती है, उसकी तजल्ली का एक वस्फ है, वस्फ यानी उसकी एक सिफत है। और तजल्ली का ये वस्फ कुदरत और रहमत के साथ इस जान नफ्स या नुक्ते के साथ हम रिश्ता है। यानी हमारी ये जो मैं है, ये जो अना है, ये जो इसी को अना भी कहते हैं, ये जान है, ये कुदरत और रहमत के साथ, यानी इसको कुदरत की भी सलाहियतें हासिल है, मिकदारों का तायुन करना कुदरत कहलाता है। कुदरत का लफ्ज कदर से है, माशाल्लाह शबे कदर आ रही है, आप उसकी तजल्ली का दीदार करना चाहते हैं। इन बातों पे गौर कीजिएगा कि तजल्ली का वस्फ अल्लाह की कुदरत और रहमत। अब रहमत किसे कहते हैं, हमारे यहाँ रहम करना बख्शे जाने को, माफ कर दिए जाने को, کہتے ہیں نہیں بھائی رحمت کا لغوی مطلب جاری رہنا ہے، تسلسل حیات ہے، کسی چیز کو کیسے جاری رکھا جاتا ہے اس کا، اس صفت کا نام رحمت ہے، کس چیز کو کن مقداروں کے اندر بند کیا جاتا ہے اس کا نام قدرت ہے۔ اب یہ سارا نظام کیسے قائم ہے؟ وہ ہے لہروں کا نظام۔ کائنات میں موجود ہر شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے، لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے، اور یہ لہریں نور کے اوپر قائم ہیں۔ اللہ کی زبان میں زمین آسمان اللہ کا نور ہیں، تخلیق کی ایک حیثیت نورانی ہے اور تخلیق کی دوسری حیثیت روشنی، نفس، جان یا نقطہ ہے۔ اب ذرا اس جملے میں توجہ دیجیے، یہ آج کا یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی گہرائی کا حامل ہے، اس کو بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہاں ہر شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ میری آواز کی لہریں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی کی لہریں ہیں، رنگوں کی لہریں ہیں۔ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو اس کے رنگوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ رنگ کیا ہیں؟ لہریں ہیں۔ لہریں ایک پانی پہ چلتی ہیں، ایک لہر آواز کی لہر ہے، ایک لہر میگنیٹک فیلڈ کی لہر ہے۔ یہ لہروں کی آگے پھر لاشمار اقسام، کازمک ریز سے لے کر، کازمک ویو سے لے کر ریڈیائی لہروں تک۔ یہ میری آواز آپ کے ذریعے ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، نام رکھ دیے ہم نے ان لہروں کے، ان کو کنٹرول، ان کو، ان پہ تصرف کا اختیار اللہ کی قدرت نے، اللہ کی رحمت نے آپ تک منتقل کیا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے لہروں کے نظام کو سمجھا، ان میں تصرف کیا اور اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ کائنات میں موجود ہر شے، کیا لکھا ہے؟ کائنات میں ہر موجود شے، ہر موجود شے لہروں کے تانے بانے پر قائم ہے۔ کلندر شعور کا حامل بندہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے، یہاں ہر چیز لہروں پہ ہے، اور پھر اس سے اگلے درجے پہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ لہریں جو ہیں یہ نور پہ قائم ہیں۔ اب نور کیا ہے؟ یہ لفظ سب سے زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کا خیال مان لیں، اللہ کا خیال، نور خیال کو کہیں، روشنی تصورات کو مان لیں، اور احساسات رنگوں کو مان لیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ذہن میں آپ کے الجھنے اور پیچیدگیاں ہیں، ان باتوں کو نہ سمجھنے کا یہ جو دھندلا پن ہے، ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ان چیزوں کے بارے میں، وہ واضح ہو جائیں گے کہ یہ لہریں نور کے اوپر قائم ہیں۔ یعنی یہ ساری لہریں اصل میں اللہ کے خیال پہ قائم ہیں، اللہ کے خیال کی لہریں ہیں۔ اللہ کی زبان میں زمین اور آسمان اللہ کا نور ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ زمین اور آسمان اللہ کا خیال ہے۔ اب دیکھیں نا، سوچیں، خیال ہم اس سے آشنا ہیں، لیکن لفظ نور سے ہم واقف ہی نہیں۔ نور کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ یہ روشنی سے لاکھوں گنا زیادہ رفتار رکھتا ہے۔ اس کی رفتار روشنی کی رفتار، روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر یا 182,286 میل، ना 186,282 मील फी सेकंड है, यानी तकरीबन 3,00,000 किलोमीटर, और नूर जो उससे फिर लाखों गुना ज्यादा तेज रफ्तार है। इन चीजों को समझने के लिए आपको अपनी हिस्सियात और अपने हवास की रफ्तारें बढ़ानी है। अब फरमा रहे हैं कि तखलीक की एक हैसियत नूरानी है और तखलीक की दूसरी हैसियत रोशनी, नफ्स, जान या नुक्ता है। जरा देखें कितना क्लियर हो गया कि तखलीक की एक हैसियत नूरानी है, यानी अल्लाह के जहन में जिस तरह से ख्याल की सूरत में, और तखलीक की दूसरी हैसियत रोशनी, यानी वो तसव्वुरात हैं जिनको हम नफ्स, जान या नुक्ता कहते हैं। इन लहरों या तखलीक के अंदर नूरानी वस को तलाश करने के लिए अल्लाह के दोस्तों ने इंसानी शऊर की मुनासबत से कायदे बनाए। अब यहां आ गया ना इंसानी शऊर, ये समझ लीजिए कि इंसानी शऊर चौथे दर्जे के शऊर को कहा गया। यहां पे इंसानी शऊर, शऊर के चार दर्जे बताए हजूर कलंदर बाब औलिया ने। पहला है इनफरादी शऊर, जब ये शऊर डेवलप होता है तो फिर ये नौई सतह का शऊर बन जाता है, जब उसको ये एहसास होता है कि मैं एक नौ हूं, मैं एक फर्द भी हूं और एक नौ भी हूं, और ये नौ जो है ये कायनात का हिस्सा है, ये तीसरे दर्जे का शऊर हो गया। और फिर इससे ऊपर के मैं, ये पूरी कायनात अल्लाह का जहन है, अल्लाह के जहन में बनी हुई है, अल्लाह के जहन से बनी हुई है, अल्लाह की चाहत से बनी हुई है, अल्लाह के इरादे से बनी हुई है। फिर आपको जब अल्लाह का एहसास और इदराक होना शुरू होता है तो इसको शऊर अव्वल का है, कायनात के शऊरी सतह को शऊर दोयम कहा है, और कायनात ये नोई सतह के शऊर को शऊर सोयम का है, और आपके इनफरादी सतह के शऊर को हजूर कलंदर बाब औलिया ने शऊर चहारम कह के मुतारिफ करवाया। इन लहरों के या तखलीक के अंदर, यानी ये फिर जब लहरों को देखते हैं तो ये तखलीक का निजाम आ गया। तो ये जो नूरानी वस्फ है, यानी उस अल्लाह के थॉट को समझने के लिए अल्लाह के दोस्तों ने इंसानी शऊर की मुनासबत से, इंसानी शऊर की सकत को, उसकी महदूदियत को सामने रखते हुए तरीके इजाद किए, कायदे बनाए, समझाने के लिए सर दुखाए, और क्या किया कि इस एक नुक्ते को छह पर तकसीम कर दिया। ये अल्लाह ने बताया कि ये तरीका इख्तियार करो, सित्तत अय्याम कहकर समझाया कि इसे छह बनावटें अता की गई हैं, इसी को छह उबाद कहा, इसी को छह तनजलात कहा, इसी को छह डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, छह रुख कहा गया है, ताकि एक मुब्तदी सालिक, मुब्तदी जिसने इब्तदा की हो, जो इब्तदाई दर्जे पे सलूक के रास्ते पे चल रहा हो, मुब्तदी सालक आसानी के साथ समझ सके। इस नुक्ते के छह हिस्सों के नाम रूहानियत में लताइफ सिता या छह लतीफे हैं। पहला लतीफा जिसको अख्फा का नाम दिया गया, हर इंसान के अंदर नुक्ता वाहिदा, नुक्ता वाहिदा है, यही वो नुक्ता है जो अल्लाह का घर है, जिसमें अल्लाह बसता है, जिस नुक्ते के ऊपर बराह रास्त अल्लाह की तजल्लियात का नजूल होता है। यानी आप ये लताइफ सिता या छह लताइफ असल में क्या है, वो एक ही जान, एक ही चीज, एक ही नुक्ते के छह दर्जे हैं, और ये छह दर्जे समझाने के लिए क्या किया गया कि इसको समझाने के लिए ग्लोब की मिसाल दी है, कि एक ग्लोब है, उसके अंदर दूसरा ग्लोब है, उसके अंदर तीसरा ग्लोब है, वो तीसरे ग्लोब, अब देखें ये तीन ग्लोब जो हैं, गोया एक बैलून के अंदर दूसरा बैलून, तीसरा बैलून अंदर उससे रख दें, तो ये तीन ग्लोब्स की छह सतहें बनी, सबसे अंदर वाला ग्लोब जो है उसकी दो सतहें हैं, एक अंदर है और एक बाहर की तरफ है, फिर उससे ऊपर वाले ग्लोब, उसके बाहर वाले ग्लोब की भी दो सतहें हैं, एक नीचे एक ऊपर, फिर तीसरे ग्लोब की भी दो सतहें हैं। हम यहाँ नुक्ते कहीं खोपड़ी में नुक्ता ढूंढ रहा है तो कोई सीने में नुक्ता ढूंढ रहा है तो जी ये लतीफ़ा है, नस्खे सिरी है तो ये नाफ के पास लतीफ़ा है, नफसी है। ये मुकामात आपके जहन को यकसू कराने के लिए तजवीज़ किए गए। असल बात ये है जो यहाँ फरमा दी गई कि एक नुक्ता है, उसको समझाने के तरीके बताए गए, उसको समझाने के लिए। और ये जो इसका पहला नुक्ता है, जो सबसे अंदर वाला सतह ग्लोब की, उसका नाम अख्फा है। और हर इंसान के अंदर ये नुक्ता वाहिदा, हर इंसान के अंदर इसी का नाम नुक्ता वाहिदा है। यही वो नुक्ता है जो अल्लाह का घर है, यानी जिस सतह पे अल्लाह के तजल्ली का अक्स पड़ रहा है, जिसमें अल्लाह बसता है, जिस नुक्ते के ऊपर पूरे बराह रास्त अल्लाह की तजल्लियात का नजूल होता है। यही वो नुक्ता है जिसके अंदर दाखिल हो जाने से इंसान कायनात के अंदर जारी और सारी सिस निज़ाम में दाखिल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कायनात के अंदर जारी और सारी निज़ाम में दाखिल होने से कायनात उसके अंडर आ जाती है, कायनात से उसका एक रिश्ता जुड़ जाता है। और वो चूँकि गवर्निंग एबिलिटी से नवाजा गया, लिहाजा कायनात के ऊपर उसकी हुकूमत कायम हो जाती है। यही वो नुक्ता जिसमें दाखिल होने के बाद, लफ्ज़ दाखिल होने के बाद, यानी आप तीसरे ग्लोब की ऊपर की सतह पे हैं, उससे अंदर की सतह, फिर उससे निचले ग्लोब की बाहर की सतह, फिर अंदर के ग्लोब की अंदरूनी सतह, फिर उसके बाद तीसरे ग्लोब की बाहर की सतह और फिर उससे अंदर की सतह। तो ये छह सतहों के नाम हो गए। सबसे ऊपर वाले ग्लोब के बाहर की सतह का नाम है लतीफ़ा नफसी, उससे अंदर वाले ग्लोब की सतह का नाम है लतीफ़ा कल्बी, फिर उससे निचले अंदर वाले ग्लोब की बाहर की सतह का नाम है लतीफ़ा रूही, और फिर उसके अंदर वाली सतह का नाम है लतीफ़ा रूही सिरी सॉरी, और उसके बाद तीसरे ग्लोब की बाहर की सतह का नाम है खफी, और उससे अंदर की सतह का नाम है लतीफ़ा अख्फा, और फिर उसके सेंटर में अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात की तजल्ली बराजमान है। इसी को नुक्ता वाहिदा कहा है। जब इंसान उस नुक्ते के अंदर दाखिल हो जाता है तो कायनात के अंदर जारी और सारी निज़ाम में दाखिल हो जाता है और कायनात के ऊपर उसकी हुकूमत कायम हो जाती है। यही वो नुक्ता है जिसमें दाखिल होने के बाद अल्लाह का ये इरशाद समझ में आ जाता है कि हमने तुम्हारे लिए आसमानों में ज़मीन में जो कुछ है सब का सब मुसख़र कर दिया, यानी आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो सब का सब तुम्हारा महकूम है, तुम उसके हाकिम हो। और इस इरशाद की तफसील ये सामने आती है कि हमने तुम्हारे लिए सूरज को मुसख़र कर दिया, चाँद को मुसख़र कर दिया, सितारों को मुसख़र कर दिया। मुसख़र होने से ये मतलब निकाला जाता है कि चाँद और सूरज को अल्लाह ने मखलूक की खिदमत के लिए एक ड्यूटी तफवीज़ की है। ये हमारी समझ, क्या हम ये समझते हैं कि मखलूक की खिदमत की ड्यूटी तफीज़ की है, इसको अल्लाह मुसख़र कह रहा है। देखें, हमने मुसख़र के लफ्ज़ को अपने अल्फाज अपने मीनिंग्स में ढाल के बात का सत्यानाश कर दिया। मुसख़र होने से ये मतलब निकाला जाता है कि चांद और सूरज को अल्लाह ने मखलूक की खिदमत के लिए एक ड्यूटी तफीज़ की है और ये बात उनके फ़राइज़ में शामिल है कि वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत बजा लाएं। हम ये ज़ाहरी तौर पे यहाँ तक समझें, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, हवा हो, पानी हो, गैस हो, दरख्त हो, हैवानात हो, नबातात हो, जमादात हो, सब इंसान की खिदमत गुजारी में मसरूफ़ हैं। ये मुसख़र होना कलंदर शऊर की दानिस्त में, मुसख़र होना नहीं है, साफ लिखा हुआ है या नहीं, तो हम अपनी समझ से क्यों बाज नहीं आ रहे? हम क्यों इसरार करते हैं कि ये जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ये हमारे लिए मुसख़्खर है? भाई वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तस्खीर का मतलब है कि वो ड्यूटी आपके कहने पे कर रहे हैं। तो द आंसर इज नो। हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कानून बना दिया है, इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। कानून बना दिया है। क्या कानून किसे कहते हैं? आज इस जुमले को तवज्जो से सुन के याद रखिए, बड़े की मर्जी का नाम है कानून। अल्लाह ने कानून बना दिया, अल्लाह की मर्जी का नाम है कानून। अल्लाह ने कानून बना दिया और इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। हर चीज इंसान की खिदमत में मसरूफ अमल है, हर चीज आपकी खिदमत में मसरूफ है। ये मुसख़्खर होना या किसी चीज पर हाकमियत कायम होना, ये मानी रखता है कि उस चीज पे तसर्रफ किया जा सके। हालांकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि नौ इंसानी चांद और सूरज के तसर्रफ में जिंदगी बसर कर रही है। सूरत हाल बिल्कुल उलट है। सूरज ना मिले तो आपका क्या हशर हो, चांदनी ना मिले तो आपका क्या हशर हो। अगर चांद और सूरज अपना तसर्रफ खत्म कर सकते तो जमीन का वजूद कायम नहीं रहता। मसलन ये कि हम धूप के मोहताज हैं, ग़िज़ाओं में शेरीनी पैदा होने के लिए हम इस बात के मोहताज हैं कि चांद हमारी खिदमत करे, लेकिन हमें चांद और सूरज पर कोई हाकमियत और तसर्रफ हासिल नहीं है। तो ये क्या तसर्रफ हुआ? अब अल्लाह का इरशाद का फिर असल मतलब क्या हुआ, इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ रुक जाते हैं, इंशाल्लाह अगली रीडिंग में फिर इससे आगे पढ़ेंगे। जो आज ही हमने मुतालिया किया, ज़रा इस पे बहुत तफक्कुर से, बहुत तवज्जो से गौर करके देखिएगा। बहुत शुक्रिया, आज सवाल जवाब नहीं हो सके, माफ़ी चाहता हूँ।